नमस्कार। आज हम एक बहुत ही किताब पर बात कर रहे हैं, वंदरीय माता भगवती देवी शर्मा की नारी को रचनात्मक दिशा दी जाए। ये देखिए, लिखी तो दशकों पहले गई थी, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं ना, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। किताब का जो सार है वो ये कि अनदेखी और पिछड़ेपन ने कहीं ना कहीं नारी की जो अपनी क्षमता है उसको दबा दिया है। वंदनीय माता जी का मानना था कि जरूरत है उनकी सोच बदलने की, उनमें एक उम्मीद जगाने की, और हाँ, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाने की।
हाँ बिल्कुल, और ये रास्ता दिखाना बहुत जरूरी था उस वक्त।
तो आज हम इसी नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि कैसे वंदनीय माता जी ने नारी शक्ति को समाज के लिए एक पॉजिटिव फोर्स बनाने का एक पूरा खाका खींचा था। वंदनीय माता जी मानती थी कि भाई नारी को ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, मतलब सामान्य हालातों में भी, गृह लक्ष्मी बनकर घर संभाल सकें, और साथ साथ ये भी जरूरी है कि समाज की बेहतरी में भी अपना योगदान दें।
सही कहा, और ये सिर्फ कोई हवा हवाई बातें नहीं थी, उन्होंने इसके लिए चार बहुत ठोस आधार बताए थे।
हाँ, वो चार आधार क्या थे?
देखिए, यही चार आधार इस पूरी सोच को जमीन से जोड़ते हैं। वंदनीय माता जी ने नारी विकास के लिए चार बुनियादी जरूरतें बताई। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वावलंबन और चौथा सम्मान। उनका कहना था कि इन्हीं के सहारे एक औरत का जो व्यक्तित्व है वो सही मायनों में निखर सकता है, और ये उस समय के हिसाब से देखें तो काफी प्रोग्रेसिव सोच थी।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं बल्कि जीवन के जो ठोस पहलू हैं उन पर ध्यान।
बिल्कुल,
तो शुरुआत स्वास्थ्य से करते हैं। वंदनीय माता जी ने किस तरह की बातें कही स्वास्थ्य को लेकर?
उन्होंने बहुत बुनियादी चीजों पर जोर दिया, जैसे घर की दिनचर्या नियमित हो, समय पर खाना, पूरा आराम।
अच्छा।
साथ ही वो जो बार बार माँ बनने का एक बोझ होता है महिलाओं पर, उसको कम करने की बात करती थी, और पर्दा प्रथा जैसी जो रस्में हैं उनसे जो शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है उसको रोकने पर भी जोर था।
पर्दा प्रथा के नुकसान, ये थोड़ा और समझाएंगे, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों कैसे?
जरूर, देखिए स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता ना, मानसिक भी होता है। वंदनीय माता जी का इशारा था कि पर्दा प्रथा जैसी जो चीजें हैं वो महिलाओं को एक तरह से बांध देती हैं। उनके घूमने फिरने पर, ताजी हवा लेने पर, लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगाती हैं। तो इससे न सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है बल्कि मानसिक रूप से भी एक घुटन सी महसूस होती है। तो स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देना उनके हिसाब से नारी को बाकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने का पहला कदम था।
समझ गया समझ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद फिर आता है शिक्षा का नंबर।
जी,
यहाँ भी वंदनीय माता जी का नजरिया मुझे लगता थोड़ा अलग था पारंपरिक सोच से। वो कहती है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जोर था कि शिक्षा दिमाग खोलने के लिए जरूरी है, मानसिक विकास के लिए। उन्होंने तो घर पर पढ़ाई, आस पड़ोस में लाइब्रेरी की सुविधा हो, और जो महिला जागरण के अभियान होते थे उनमें हिस्सा लेने को भी बढ़ावा दिया।
और ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं थी शायद?
हाँ, यही खास बात है। वंदनीय माता जी व्यावहारिक शिक्षा पर बहुत जोर देती थीं, मतलब ऐसी शिक्षा जो असल जिंदगी जीने में काम आए, जैसे अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, समाज में जो गलत धारणाएं या रीति रिवाज फैले हैं उनको कैसे समझना है, बच्चों की परवरिश ठीक से कैसे करनी है, पति पत्नी के रिश्ते, परिवार में संतुलन, ये सब।
अच्छा,
तो उनका लक्ष्य सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं था बल्कि एक ऐसी समझ देना था जिससे जीवन बेहतर हो। उस समय के लिहाज से ये जीवन जीने की शिक्षा वाली बात बहुत अहम थी।
हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, स्वावलंबन यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस।
जी, स्वावलंबन। वंदनीय माता जी मानती थीं कि पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ये महिलाओं के पिछड़ने और कहीं ना कहीं उनके दमन का एक बहुत बड़ा कारण है।
तो इसके लिए क्या उपाय सुझाए उन्होंने?
उन्होंने बड़े ही व्यावहारिक सुझाव दिए, जैसे एक चीज थी स्त्री धन। जो पैसा या संपत्ति महिलाओं की अपनी होती है उसे सिर्फ गहनों में लगाकर मत रखो।
अच्छा।
हाँ, बल्कि बैंक में जमा करो, उसे बढ़ाओ। ये एक तरह से आप कह सकते हैं उस जमाने में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने जैसा था।
ये तो बड़ा दिलचस्प है, उस जमाने में बैंक डिपॉजिट की बात करना। और कमाई के बारे में क्या कहा?
देखिए, कमाई के वो दो पहलू देखती थी, एक तो बचत और दूसरा कमाई।
बचत और कमाई कैसे?
हाँ, वो इस बात पर जोर देती थीं कि घर के जो काम हैं, जैसे खाना बनाना है, सिलाई कढ़ाई है, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, ये सब करके महिलाएं असल में घर का पैसा बचा रही हैं। और इस बचत का भी एक आर्थिक महत्व है जिसे अक्सर हम गिनते नहीं हैं, अनदेखा कर देते हैं।
सही बात है।
और इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को घर बैठे ही छोटे मोटे उद्योग शुरू करने की सलाह दी, जैसे सिलाई बुनाई है, अचार पापड़ बनाना, मसाले पीसना, मतलब जो भी उस जगह के हालात के हिसाब से मुमकिन हो, इससे उनकी सीधी कमाई भी हो।
ये वाकई जमीनी स्तर के ग्रास रूट लेवल के उपाय लगते हैं। बहुत खूब। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्तंभ, सम्मान।
जी, सम्मान।
यहाँ वंदनिया माता जी का क्या कहना था? अपमानजनक व्यवहार के बारे में तो उन्होंने जरूर कुछ कहा होगा।
बिल्कुल, वो गाली गलौज, मारपीट या किसी भी तरह का जो अपमानजनक बर्ताव होता है उसके सख्त खिलाफ थीं। वो तो यहाँ तक कहती थीं कि पति पत्नी हो या परिवार के दूसरे सदस्य, सबको एक दूसरे से आप कहकर इज्जत से बात करनी चाहिए, बच्चों से भी।
आप कहकर बात करना, ये छोटी बात लगती है पर है बहुत गहरी।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ बुरे बर्ताव से बचना भर नहीं था, सम्मान का मतलब इससे ज्यादा था उनके लिए।
तो फिर क्या था और क्या मतलब था सम्मान का?
ये था महिलाओं की गरिमा को, उनकी डिग्निटी को एक्टिवली स्वीकार करना, उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद न रखना बल्कि समाज के कामों में आगे लाना, जैसे पंचायतें हैं या सहकारी समितियां हैं, उनमें उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।
और वो उन डरों को भी खारिज करती थी कि भाई घर से बाहर निकलकर काम करने से महिलाएं बिगड़ सकती हैं या पथभ्रष्ट हो सकती हैं।
हाँ, ये डर तो आज भी सुनने को मिलता है कई बार।
जी, उनका मानना था कि जब किसी को इज्जत और जिम्मेदारी दी जाती है तो वो खुद अपनी मर्यादा का ध्यान रखता है,
सम्मान से आत्मविश्वास आता है।
तो अगर हम इसे समेटें तो वंदनिया माता जी का जो पूरा नजरिया था वो नारी के एक होलिस्टिक, एक संपूर्ण विकास पर केंद्रित था, जिसमें अच्छी सेहत हो, प्रैक्टिकल शिक्षा हो, आर्थिक आजादी हो और सामाजिक सम्मान भी हो।
बिल्कुल।
और ये सब चीजें मिलकर ही उन्हें परिवार और समाज के लिए एक रचनात्मक, एक पॉजिटिव शक्ति बना सकती थी।
हाँ, एकदम सही। और इन्हीं सब विचारों से एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको आज सोचने की जरूरत है।
क्या सवाल है?
वंदनिया माता जी परिवार को एक छोटा राष्ट्र कहती थी, एक मिनी नेशन।
अच्छा, परिवार एक छोटा राष्ट्र।
हाँ, तो अगर हम परिवार को सचमुच एक छोटे राष्ट्र की तरह देखें और उसमें नारी की भूमिका को इस राष्ट्र निर्माण के नजरिए से समझें, तो आज हमारी अपनी सोच और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में क्या बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है, ये सोचने वाली बात है।